अस्माउल हुस्ना के सिलसिले में हम आज अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नाम अल हकीम पे बात करेंगे। और इस नाम पे बात करने के लिए उस वक़्त से मेरा दिल चाह रहा है जब से ये सीरीज़ शुरू हुई है कि हम इस नाम की हिकमतें और अल्लाह ताला का ये नाम इस अंदाज़ में देखें कि हम भी हिकमतें सीख सकें। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला के इस नाम के अंदर हमारे लिए क्या सोचने और तदब्बुर करने की बातें हैं। हकीम का लफ्ज़ हा काफ मीम से है, फ़ाइल के वज़न पे बहुत बड़ी हिकमतों वाला। इसी रूट से इसम फ़ाइल के जो वज़न हैं वो हाकिम भी होते हैं, हुक्काम भी होते हैं, लेकिन हकीम के अंदर कंटिन्यूटी है। फ़ाइल का जो वज़न है ना, जैसे रहीम का वज़न होता है, तो इसमें किसी काम का मुसलसल होना होता है। जैसे रहमान और रहीम है ना, तो रहमान आम लफ्ज़ है लेकिन रहीम के अंदर कंटिन्यूटी है। बिल्कुल यही चीज़ अल हकीम में भी है। मुख्तलिफ़ मुफस्सरीन ने इस नाम को कैसे समझा देखेंगे। इब्ने जरीर रहमहुल्लाह कहते हैं, अल हकीम अल्लसी, अल हकीम जल्ल जलालुहू वो ज़ात है जिसकी तदबीरों में कोई खलल और रुकावट नहीं आती। नोट कीजिएगा, हम इंसान कितनी ही तदबीरें करते हैं, कितने ही प्लान्स बनाते हैं, फिर रुकावटें आ जाती हैं, खलल आ जाते हैं, काम कर ही नहीं पाते। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो है जब कुछ करना चाहे तो उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आती। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ले फरमाते हैं, अल हकीम वो ज़ात है जो हर चीज़ को इसकी अपनी सही जगह पर हिकमत के साथ और इंसाफ के साथ रखती है। चीज़ों को उनकी जगह पे सही तरीके से और इंसाफ के साथ रखना, ये अल्लाह की सिफत है। हलीमी कहते हैं, हकीम जल्ला जलालहू वो ज़ात है कि ठीक बात कहना और सही काम करना ही उसकी शायान शान हो, और मुनासिब भी यही है कि ये सिफात अल्लाह की शान के मुताबिक हो, इसलिए कि इसके अफ़ाल बिल्कुल मुनासिब और उसकी पैदा करदा चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। और ये सब बातें हकीम ज़ात के अलावा हर एक से नहीं हो सकती, जैसा कि तमाम कामों पर कुदरत इसी ज़ात को है जो हय्य आलम क़दीर जल्ल जलालहू है। इसी तरह फिर अल हकीम भी वही है। कितनी बातें से एक तारीफ़ में, ठीक बात कहना, सही काम करना, मुनासिब अफ़ाल, पैदा की भी सारी चीज़ें ठीक। सोचें अपने आप को, मैं उस हकीम की हिकमतों का नतीजा हूँ। आंखें वहाँ लगी जहाँ होनी चाहिए, कान वो करते हैं जो उनको करना चाहिए। कोई कर सकता है ऐसा? सिर्फ अपने वजूद को देख के मुस्कुरा दें कि अल हकीम के अलावा तो कोई मुझे ऐसा नहीं बना सकता था। अल्लाह ताला का ये नाम कुरान पाक में 94 टाइम्स आया है। मसलन सूरत बकरा आयत 228, वल्लाहु अजीज़ुन हकीम। सूरत निसा आयत 26, वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरत अलनाम आयत 18, वहुवल हकीमुल खबीर। सूरत नूर आयत 10, वलौल फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाहा तव्वाबुन हकीम। सूरत शूरा आयत 51, औ युरसिल रसूलन फयूही बिइज़्निही मा यशाउ इन्नहु अलीयुन हकीम। और सूरत निसा आयत 130 में आता है, वहीं ये तफर्रका युग्निल्लाहु कुल्ल मिन सअतिही वकानल्लाहु वासियन हकीमा। आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला का ये नाम मुख्तलिफ नामों के साथ आया है, कहीं अजीज के साथ, कहीं अलीम के साथ, कहीं खबीर के साथ, कहीं पहले ये आया तो दूसरा बाद में, कहीं तवाब के साथ और कहीं वासियन के साथ। और हर आयत के आखिर में अल्लाह का ये नाम आना एक अलग मानी रखता है। बस आखिरी जो सूरत निसा की आयत हमने देखी, शौहर और बीवी के जुदा होने के बाद फिर उनको उनके मिजाज का शौहर देने की बात है। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, कहाँ से तोड़े और उसको कहाँ जोड़ दे। अल्लाह ताला की ज़ात हिकमतों वाली है, उसका हर काम हिकमत पे है। कायनात के अगर इस निज़ाम को देखें तो अल्लाह की कितनी हिकमतें दिखती हैं। आसमान से जब बारिश उतरती है, कितनी उतरनी, कहाँ उतरनी, ये क्या है, उस हिकमत वाले की हिकमतें हैं। सूरत मोमिनून की आयत 18 में आता है, वअन्ज़लना मिनस समाई माअ बिक़दरिन फ़सकन्नाहु फ़िल अर्ध वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। और उतारा हमने आसमान से पानी नाप कर, फिर इसको ठहरा दिया ज़मीन में, और हम इसको ले जाएं तो ले जा सकते हैं। बारिश हो रही हो तो उस वक्त देखा करें, अगर एकदम सारा पानी छट 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 गिर जाए, क्या होगा, किसने रोका हुआ। बेकदर की शर्त है पानी के गिरने में। इंसान तो इतना कमज़ोर है कि पानी ज़रा ज़रा से ज़ायद गिर जाए तो वो डूब ही जाए, और पानी कम हो जाए तो इंसान जानवर भी ना जिंदा रहे। तेज़ हो जाए तो ये हरिकेन का नमूना बन जाता है पानी, ज़मीन से निकले तो फ्लडिंग की सूरत है। लेकिन अल्लाह की ज़ात एक ख़ास हद तक दे के रोक लेती है। जब बारिश होगी ना, उस वक़्त अल्लाह ताला के इस नाम पे गौर कीजिएगा, जो ऊपर से ओले गिरते हैं, आप उसका साइज़ ही देख लें, छोटी छोटी गोलियाँ, और अगर वो 5-5 किलो की सिलें बरसती, क्या होता। मैं दुबई में थी तो मुझे किसी ने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ बनती हैं। साथी थी तो उन्होंने बताया कि उनका घर काफ़ी ऊंची था, जगह पे था, तो मुझे बहुत ही शौक आया ना कि मैं देखना चाहती हूँ। खैर, उन्होंने हमें इनवाइट करा, मुझे याद नहीं है, गालिबा 52 या अराउंड 100 कुछ फ्लोर था। फिर हम वहाँ गए ऊपर, मैंने कहा मुझे बाहर ही देखना है। अब देखे कि जब हम बालकनी में गए तो एक अजीब मंजर था ना, बाहर व्यू था। उन्होंने दिखाया इधर शारजा है, इधर दुबई है, इधर अबू धाबी है, और सूरज निकलता है तो मुझे यहाँ से दिखता है। और मैंने कहा आपको डर नहीं लगता, आप इतनी ऊंची जगह पे हैं, एक पतली सी बिल्डिंग ऐसे एक सांप की तरह ऊपर लहराती है ना। पतली कहती शुरू में लगता था, मैं जब गई तो मैं बालकनी से बाहर देखते हुए भी शुरू में, मतलब अंदर दिल में खौफ था, उनको तो मैंने नहीं कुछ कहना था, लेकिन मुझे डर लगे कि मैं बालकनी की तरफ जाऊंगी तो कहीं मेरे बोझ से ये बिल्डिंग इधर तो नहीं हो जाएगी। फिर नीचे झांकते हुए डर लगे, ऐसे लगे पता नहीं क्या होगा, कहीं नीचे देखूंगी तो मेरा दिल ना बैठने लगे। तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि एक दिन वो और उनके शौहर शायद बैठे हुए थे सुबह ही के वक्त में, और नीचे दिखती थी गाड़ियाँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी जाती हुई दिखती थी। तो कहने लगी कि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं होती, तो हमने ऐसे ही देखा कि एक गाड़ी वहाँ से रोड से आ रही थी, फिर यहाँ से मुड़ी और एकदम ज़ोर की चीख लगी, यानी ब्रेक हुई, और कह रही पलट के देखा तो साथ ही कोई दूसरी बिल्डिंग जो थी, जो बन रही थी, क्रेन के हाथ में एक सिल थी पत्थर की, जो ऊपर कहीं लेके जा रही होगी बनाने में, और उस क्रेन के हाथों से वो फिसल गई, शायद सही ग्रिप ना लगी, क्या हुई, तो वो सिल ऊपर से गिरी और एग्जैक्टली इस गाड़ी की छत पे गिरी। और कह रही कि चंद सेकंड पहले जिस गाड़ी को हम रोड पे दौड़ता हुआ देख रहे थे, बाद में जाके नीचे जाके भी देखा, तो कह रही वो इस तरह फ्लैट हुई हुई थी गाड़ी उस सिल के बोझ और प्रेशर से गिरने से, और सब ख़त्म हो गया। इसको मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर आसमान से भी इतनी बड़ी बड़ी सिलें गिरें, किसका कंट्रोल है, नहीं है ना। तो ये अल हकीम है, पानी जितना चाहिए उतना ही देता। अगर एक साल भर का पानी, 6 माह का पानी एक ही दफ़ा बरसा दे कि लोगों जमा कर लो भर लो, कहाँ रखते, घड़ों के अंदर, टीलों के अंदर, टिब्बों के अंदर पानी पानी हो जाए। ये उसकी ज़ात है, कहाँ किसको कितना दे, जितना ज़र्फ होता है वो उतना देता है। वो तो इंसान को कोई नेमत भी उसके ज़र्फ से ज़्यादा दे दे तो इंसान फटने लगता है, फूलने लगता है, आपे से बाहर होने लगता है। ज़रा देखा करें कि लोगों को जब दौलत मिलती है और जब पहले कम हो और नई नई दौलत आती है तो वो ऐसी लगती है जैसे ऊपर ऊपर का लगाया हुआ मेकअप ऊपर से छाल बन के उतर जाए। जज्ब नहीं होती वो चीज़, क्योंकि हौसला कम होता है अंदर, उनके वो चीज़ होती नहीं है कि जो उसको कबूल कर सके। तो ये उस ज़ात को पता है कि मुझे कहाँ किसको क्या देना है। और बर्फ़ जो बनती है पानी से, अल्लाह अकबर, ना मट्टी ना कुछ, और कहाँ जाके ऊपर बर्फ़ को सजाता है, साफ सुथरी। और फिर एक कतरा 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 ऐसे लगता है कि ज़मीन से गिरता है। बड़ी बड़ी पाइपें होती कोई आसमानों पे, वहाँ से पानी गिरता, ये उसके काम है। कुरान पाक में आता है एक जगह, फसकन्नाहु फिल अर्थ, कि पहले बादल बनते हैं फिर हम उसको ज़मीन की तरफ लाते हैं। सोचा करें, तदब्बुर किया करें, जितना आप अल्लाह ताला की निशानियों और आयतों पे गौर करेंगे ना, उतना आपका दिल बैठता जाएगा, अपना आप छोटा लगेगा और अल्लाह की ज़ात बड़ी लगेगी। और किसी जगह से पानी खुश कर दे तो क्या है, वइन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरून, हम इस सारे पानी को वापस ले जाने पे कादिर हैं। सहराओं में देखें जब खुश्की होती है, जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप पानी नहीं ला सकते। दरियाओं को देखिए, फिर दरिया समंदरों में गिरते हैं, समंदरों के ऊपर से गुजरते हुए जो एहसास होता है, अल्लाह अकबर, कहीं मीठा कहीं नमकीन पानी। हम एक जगह गए और वहाँ झील थी, वो कहते हैं कि उसमें इतना नमक है कि उसमें कोई बंदा डूब ही नहीं सकता। उस शहर को सॉल्ट सिटी कहते हैं कि उसकी तह में नमक ही नमक है, पानी इतना भारी है डूबने नहीं देता। किसने पैदा किया, ये उस हिकमत वाले की ज़ात है। और अगर सारे ही पानी नमकीन कर देता, कुरान पाक में आता है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे पानी को नमकीन कर दे, दिल को जलाने वाला पानी पी नहीं सकते, क्या कर लेते। फिर आप देखिए कि कहीं दरियाओं को मिलाता है, मरज अल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दो दरियाओं को मिलाता है, बीच में पर्दा दिखता नहीं लेकिन पानी आपस में मिलते नहीं है। फिर दुनिया के इतने खूबसूरत इलाके हैं कि बास जगह तो अब बिल्कुल सुन हो जाते हैं। हमने एक सफ़र में एक झील देखी, बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे प्याला है, अंदर पानी है और चारों तरफ पहाड़ है। और हम उसके साथ साथ चलते गए, बहुत लंबा चक्कर हुआ, कोई शायद 1 मील से भी ज़्यादा। आप पानी को डिफरेंट जगहों से देखें ना तो पानी का शेड डिफरेंट दिखता है। जहाँ से आप चलते हैं वो आपको नीला पानी दिखता है, बीच में आके फिरोजी हो जाता है, और जहाँ आके ख़त्म होता है ना वहाँ सब्ज़ हो जाता है। और फिर वहाँ हमने एक अजीब मंज़र देखा कि किनारों पे पानी कुछ कुछ जमा हुआ भी था। ज़ाहिर है मौसम गर्मियों का था, हम जब गए तो पानी बीच में जमा हुआ था, लेकिन जो किनारे होते हैं ना झील के, तो वहाँ ऐसे लगता था जैसे बर्फ़ जमा करके रखी हुई है। तो हमें ऐसे फील हुआ कि शायद जो भी यहाँ के काम करने वाले वो रखते हैं इधर किनारों पे ये बर्फ़। समझ नहीं आई कि ये क्यों रखे हुए, ऐसे जैसे छोटी छोटी जैसे सिले नहीं होती मट्टी की, उस तरह समझे बर्फ़ की जो थी किनारों पे रखी हुई। तो हम चलते चलते कहीं थक के बैठे, फिर वो मंजर जो देखा वो तो आज भी मैं कभी बहुत वो जगह याद करूँ तो मेरी आंखों के आगे आ जाता है। एकदम क्या हुआ कि हवा चली, चलती है हवा जो थी ना, वो जो उनकी किनारों के पास जो यानी जमी हुई बर्फ़ होती है ना, उसको हवा ने खींचना शुरू कर दिया। बिल्कुल चंद सेकंड के अंदर हमने देखा कि जो बर्फ़ थी ना वो पहाड़ी की शक्ल में छोटी छोटी जैसे बाढ़ बन के तो किनारों पे आ गई। ऐसे लग रहा था कि कोई पीछे हाथ है और वो उठा उठा के टुकड़े जोड़ रहा है, और वो सारी बर्फ़ की टुकड़ियाँ जो थी ना वो कोने में आके तो बिल्कुल दीवार बन गई। फिर हमें समझ आई कि ये हवाओं से ऐसे होता है। और किसी ने हमें बताया कि इसी तरह फिर ज़मीन के ऊपर ये जो पहाड़ बने हुए ना, ये भी ऐसे ही बने थे, नीचे से ऐसी फोर्सेस उठी मतलब उस ज़मीन को दबाते गए और पहाड़ उभर उभर के ज़मीन के ऊपर चले गए। इतने काम इस कायनात में हो रहे हैं, सुबह शाम रात दिन, लेकिन हम गौर नहीं करते, तसव्वुर भी नहीं करते। जो जात इतनी हिकमतों वाली हो, क्या वो मेरे बारे में गलत फैसला कर सकती है? सिर्फ कायनात पे ही तदब्बुर कर लें, आपको यकीन आ जाएगा कि आपके रब ने आपके बारे में जो फैसला किया वो बेहतरीन फैसला है। आप अपने रब का बेहतरीन शाहकार हैं। आपका रब आपको ऐसे ही नहीं दुनिया में छोड़ देता। आप सोचिए, इंसान हो और अकली ना हो, अंदर खाली खोपड़ी उसकी हो और उसको ज़मीन पे छोड़ दिया जाए, पता ही ना चले करना क्या है। चलने की बजाय लेटना शुरू हो जाए, खाने की बजाय चिल्लाना शुरू हो जाए। एक एक चीज़ हमारे जिस्म की बताती है कि वो हिकमतों वाला है। फल खाते हैं, कहाँ कहाँ से गुजर के हमारे जिस्म में जाता है। पहले लोआबे दहन उसको गीला करता है, फिर दांत उसको पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जाते हैं, फिर हमारी खुराक की नाली से वो नीचे जाता है। अगर खुराक की नाली उसको नीचे ले जाने की बजाय ऊपर ले जाए, जो कभी कभी होता है वॉमिटिंग की सूरत में, तो क्या हो। फिर मैदे में न जाने क्या क्या नमक और एसिड्स रखे हुए हैं जो उसको खूब अच्छा मलिदा करते हैं, और फिर उसके बाद वो हमारी अंतड़ियों में जाता है। उसकी दीवारें उसमें से अच्छे हिस्से को जज्ब कर लेती हैं और खून में ले जाती हैं, और आखिर में जो बिल्कुल बचने वाली चीज़ें जो ज़ाया होनी होती हैं वो बड़ी आंत में चली जाती हैं, और उसको फिर आगे से एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए जिस्म से निकाल दिया जाता है। ऐसे लगता है कि पूरा पाइपों का काम हो रहा है ना, कोई पाइप इधर से चीज़ को लेके एंड पे कहाँ ले जाते हैं। आज दुनिया में कोई भी काम ऐसा करता है तो हम उसको देख के बहुत एडमायर करते हैं, बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने जो कुछ किया ये कौन करा रहा है? किसने उसको बताया कैसा करो? ये उस ज़ात ने कहा जो अल हकीम है। अगर वो मैदे को ये हुक्म ना दे, ये सारे ऑर्गन ये काम ना करें, तो हम खाना खा के बैठे रहें, पता चले वो अंदर ढेरी लगी पड़ी है। जैसे बाहर कहीं खाना पड़ा हो तो ख़राब हो जाता है ना, वो हमारे मुंह में ही पड़ा पड़ा नीचे जमता ही जाए। तदरीज, इर्तका, ये उसकी हिकमतों की दलील है। हर चीज़ हिकमत से बनाई। उलामा इकबाल ने भी कहा था ना, नहीं कोई चीज़ नकम्मी ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हर चीज़ कुछ ना कुछ फ़ायदा रखती है। जिनको हम सांप और बिच्छू समझ के उनसे डरते हैं और कहते हैं इनके पैदा करने का क्या मकसद था, बाज़ दफ़ा वही इंसान के लिए इतने फ़ायदे वाले बन जाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। कहते हैं कि एक बादशाह था, अपने दरबार में बैठा हुआ था बड़ी शान से। एक मक्खी आकर उसकी नाक पे बैठ गई, बादशाह ने इसको उड़ा दिया। वो फिर आकर बैठ गई, इसने दोबारा उड़ाया, फिर आके बैठ गई। आपको पता है कि मक्खी को आप जितना उड़ाते हैं ना, वो उतना ही आपके साथ आती है। उस वक्त बादशाह ने सोचा, अल्लाह जाने अल्लाह ने इस मक्खी को पैदा क्यों किया है, ये तो तकलीफ़ ही पहुँचा रही है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो उस वक्त दरबार में एक बुज़ुर्ग मौजूद थे, बादशाह से कहने लगे, इस मक्खी का एक फ़ायदा तो ये है कि तुम जैसे जाबिर और मुतकब्बिर इंसानों के दिमाग दुरुस्त करने के लिए पैदा की है, यानी तुम्हारा तकब्बुर टूट रहा है ना, तुम सब पे रोब डालते हो और ये मक्खी तुम्हें बेबस कर रही है। तुम अपनी नाक पर मक्खी बैठने नहीं देते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दिखाया कि तुम कितने आजिज़ हो, कि एक मक्खी तुम्हें सताना चाहे तो तुम में इतनी ताकत नहीं कि अपने आप को बचाओ। तुम सोचो कि जब फिर तुम दूसरों के साथ ज्यादती करते हो तो वो क्या सोचते होंगे। अल्लाह ने हर चीज़ हिकमत से पैदा की है। अल्लाह अकबर। आपने इमाम राजी का नाम यकीनन सुना होगा, अरबी मुफस्सिर, और इनकी बहुत मारूफ तफसीर है अरबी में, तफसीर कबीर। एक तफसीर इब्ने कसीर है ना, तो इनकी तफसीर कबीर है। सिर्फ सूरत फातिहा की तफसीर जो है ना, वो 200 सफ़ों पे है। तो ये अपनी उस तफसीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो आए थे ना, इसकी तफसीर में एक वाक्या लिखते हैं, आपके साथ पढ़ के शेयर करती हूँ उसका तर्जुमा। कहते हैं कि मैंने एक बुज़ुर्ग से उनका अपना वाक्या सुना जो बगदाद में रहते थे। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक दिन शाम को सैर करने के लिए दरियाए दजला के किनारे चला गया। जब मैं दरियाए दजला के किनारे किनारे चलने लगा तो मैंने देखा कि मेरे आगे एक बिच्छू चला जा रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बिच्छू भी खुदा की मखलूक है और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने इसको किसी न किसी हिकमत और मसलहत के तहत ही पैदा किया है। अब इस वक्त पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी मंजिल क्या है, वहाँ जाकर क्या करेगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे पास तो वक्त है, मैं सैर के लिए निकला हूँ, आज मैं इस बिच्छू का ताकुब करता हूँ कि ये कहाँ जाता है। चुनाचे वो बिच्छू आगे आगे चलता रहा और मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते इसने फिर दरिया की तरफ रुख किया और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। मैं भी करीब ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि दरिया में एक कछुआ तैरता हुआ आ रहा है। वो कछुआ आकर किनारे लग गया और ये बिच्छू छलांग लगाकर इसकी पुश्त पर सवार हो गया। बिच्छू कहते हैं स्कॉर्पियन को। इस तरह अल्लाह ताला ने इसके लिए दरिया उबूर करने के लिए कश्ती भेज दी। चुनाचे वो कछुआ इसको अपनी पुश्त पर सवार करके रवाना हो गया। चूँकि मैंने ये तय कर लिया था कि आज मैं ये देखूँगा कि बिच्छू कहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने भी कश्ती किराए पर ली और इसके पीछे पीछे रवाना हो गया। इसको कहते हैं तदब्बुर और कायनात को देखना। है कहते हैं हत्ता कि इस कछुए ने दरिया पार किया और इस तरह दूसरे किनारे जाकर लग गया और वो बिच्छू छलांग लगाकर उतर गया। अब बिच्छू आगे चला और मैंने इसका फिर ताकुब करना शुरू कर दिया। आगे मैंने देखा कि एक आदमी एक दरख्त के नीचे सो रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये बिच्छू इस आदमी को काटने जा रहा है। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इस आदमी को बेदार कर दूं ताकि वो शख्स इस बिच्छू से बच जाए। लेकिन जब मैं इस आदमी के करीब गया तो मैंने देखा कि एक जहरीला सांप अपना फन उठाए इस आदमी के सर के पास खड़ा है और करीब है कि वो इस सांप इसको ढंस ले। इतने में ये बिच्छू तेज़ी के साथ सांप के ऊपर सवार हो गया और इसको एक डंक मारा कि वो सांप बल खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। फिर वो बिच्छू वहाँ से किसी और मंजिल पर रवाना हो गया। अचानक इस सोने वाले शख्स की आँख खुल गई और इसने देखा कि करीब से एक बिच्छू जा रहा है। उसने फौरन एक पत्थर उठाकर इस बिच्छू को मारने के लिए दौड़ा। यानी वो फौरन एक पत्थर उठाकर इस बिच्छू को मारने के लिए दौड़ा। मैं करीब ही खड़ा ये मंजर देख रहा था, इसलिए मैंने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और इससे कहा कि तुम जिस बिच्छू को मारने जा रहे हो ये तुम्हारा मुहसिन है, इसने तुम्हारी जान बचाई है। हकीकत में ये सांप जो यहाँ मरा हुआ पड़ा है तुम पर हमला करने वाला था और करीब था कि डंक मार कर तुम्हें मौत के घाट उतार दे, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत दूर से इस बिच्छू को तुम्हारी जान बचाने के लिए भेजा है और अब तुम इसी बिच्छू को मारने की कोशिश कर रहे हो। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने इस रोज़ अल्लाह ताला की रबूबियत का ये करिश्मा देखा कि किस तरह अल्लाह ताला इस बिच्छू को दरिया के दूसरे किनारे से इस शख्स की जान बचाने के लिए यहाँ लाए। हकीकत यह कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसकी पैदाइश में उस अल हकीम की कोई हिकमत और मसलियत ना हो। एक मुहावरा आपने सुना हुआ है कि ख़राब घड़ी भी दिन में दो वक्त तो सही वक्त ही दिखाती है। कैसे समझे? आप खाली बंद घड़ी खड़ी रखें, दिन में दो दफ़ा वो ठीक टाइम दिखाएगी। जब एक दफ़ा सुबह को 12 बजेंगे और एक दफ़ा रात को 12 बनेंगे। ये है कायनात, उस मालिक ने जो कुछ पैदा किया ना वो हिकमतों के साथ है। इतना मुकम्मल जहान, इतनी बेहतरीन मशीनें बनाने वाला, इतने प्यार से जोड़ने वाला। बहुत खूबसूरत और वाक़यात भी हैं जो इंशाल्लाह हम इस नाम के साथ देख सकते हैं। एक वाक्य और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये वाक्या आपको मैंने पहले भी एक मौके पे सुनाया हुआ है, लेकिन उस वक्त आपने किसी और एंगल में देखा था और अब हम एक किसी और एंगल में इसको देखेंगे। और उस वाक्य से पहले एक और वाक्या सुनाती हूँ। कहते हैं कि किसी बादशाह का वज़ीर तकदीर पर बड़ा खुश रहता था। हर अच्छे और बुरे वाक्य पर ये कहता था बहुत अच्छा हुआ। आप कहती हैं ऐसे, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, एक दफ़ा बादशाह की उंगली कट गई। वज़ीर ने हंसवे आदत कहा बहुत अच्छा हुआ। बादशाह को वज़ीर के इस बेमहल फ़िक्रे के इस्तेमाल से रंज हुआ और वज़ीर को कैद खाने भिजवाने का हुक्म दे दिया। वजीर ने सुकम को सुनकर भी वही फिक्रा कहा, बहुत अच्छा हुआ। दूसरे रोज बादशाह शिकार में अपने हमराहियों से बिछड़कर अकेला जंगल में दूर निकल गया। चूंकि रास्ता मालूम न था, इसलिए लाचार एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। इतने में एक शेर नमूदार हुआ और बादशाह पर हमला आवर हुआ। बादशाह ने सांस खींच लिया और मुर्दा सा बनकर पड़ रहा। शेर जख्मी उंगली को सूंघ कर बादशाह को इस ख्याल से छोड़कर चला गया कि ये पहले से किसी जानवर ने खाया हुआ है। इतने में बादशाह के हमराही भी तलाश करते हुए वहां आ गए। बादशाह को सही सलामत पाकर सजदे शुक्र बजा लाए और इस वाक़े को सुनकर बादशाह की जान बच जाने को नहायत गनीमत और खुदा की खास रहमत ख्याल किया। वापस आकर बादशाह ने वजीर को कैद खाने से तलब करके इनाम से माला माल कर दिया और कहा, वाकई अगर कल मेरी उंगली न कटती तो आज वो शेर मुझे हरगिज़ न छोड़ता। और उंगली का कट जाना वाकई बहुत अच्छा हुआ। वजीर ने कहा, तुमने कैद खाने को जाते वक्त भी बहुत अच्छा हुआ कहा, इसमें क्या मसलियत ख्याल करके ये फिक्रा कहा गया था? वजीर ने जवाब दिया कि लाजमी तौर पर मैं आपका हम रिकाब रहता और शेर आपको छोड़कर मुझे खा जाता। समझ रहे हैं? कि यानी मेरा कैद में जाना भी अच्छा रहा, वरना तो मैं वहाँ मर जाता। तो लिहाजा अल्लाह की हर बात में हिकमत है। एक शेर भी अरबी का कि खैर व शर, यानी उसका मफहूम है, खैर व शर को तू समझ नादा के आब, खाक को नाफे है आतिश को मुजिर। पानी जो है ना मट्टी को फ़ायदा देता है लेकिन आग को बुझा देता है। तो कोई चीज़ अगर एक एंगल में ख़राब होती है ना, तो दूसरी तरफ से वो अच्छी भी हो जाती है। अल्लाह पे राज़ी रहना चाहिए, उसके फ़ैसलों को दिल की खुशी से कबूल करना चाहिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं।